ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 18 ಜೊ ಜೆ ಆಗೇ ಅಭಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೇ ಇಸ್ಕೆ ಆಗೇ ಭಿ ಹಮ್ ಚಲೇ 23 ತಕ್ ಜಾನೆಗೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೇ. ತೋ ಅನುವಾದ ಎವಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಎವಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜಗದ್ ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹಮಾರೇ ಬೀಚೆ ಬೀಚೆ ದ್ವಾರಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಅತಃ ಸಂಪೂಜಯ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಕರ್ಮ ಅಪ್ನಾ ನಿಯತ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಬನೆ ರಹಕರ್ ಸ್ವಕರ್ಮ ಅಪ್ನಾ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಂಜಸಾ ಬಿನಾ ಕಠಿನಾಯಿಕೆ ಕೇನಾ ಜಿಸ್ಸೆ ವರ್ತೇತ ಜೀವಿತ ರಹತಾ ಹೈ ತಾ ವಹ ಏವ ನಿಶ್ಚಯ ಹಿ ಅಸ್ಯ ಉಸ್ಕಾ ಹಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ದೈವತಂ ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಚದ ಗ್ರಹ. ಅನುವಾದ ಸುನಿಯೆ. ಅತಃ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ವಹ ಕರ್ಮ ಕಿ ಹಿ ಠೀಕ್ ಸೆ ಪೂಜಾ ಕರೆ. ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ರೇ ಅಭಿ. ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಭಾವ ಕೆ ಅನುರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಬನೆ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಹಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾ ನಿರ್ವಾಹ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಜಿಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಜಿಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ರಹ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ವಹಿ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಹಮಾರಾ ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಹೈ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಆಧುನಿಕ ಬೇಹುದೆ ದರ್ಶನ ಕಾ ಸುಝಾವ್ ರಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಕರ್ಮ ಯಾ ಕಾಮ ಧಂಧಾ ಹಿ ಅಸಲಿ ಈಶ್ವರ ಹೈ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷ ಔರ್ ಹಮೇ ಕೇವಲ ಅಪ್ನೆ ಕರ್ಮ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಛಾನ್ಬೀನ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಹಮ್ ಯಹ ಪಾಯೆಂಗೆ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಕರ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಕಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಹೈ. ಜೈಸಾ ಕಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಕುಚ್ ಗಂಭೀರತಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ತೀಸರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ 28ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹಾ ಗುಣಾ ಗುಣೇಶು ವಂತಂತೆ. ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಕಾ ಅನುಸಾರ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇಸ್ ಜೀವನ ಮೇ ಕಿಯೆ ಗಯೆ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಸೆ ಹಮೇ ಉತ್ತಮತರ ಅಗಲಾ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಾ. ಯದಿ ಯೇ ಸಚ್ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ಶರೀರ ಸೆ ಪಿಛೆ ಕಿಸೀ ನಾ ಕಿಸೀ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಔರ್ ಯದಿ ಐಸಾ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮ ಕ್ಯೋ ಕರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರೇ. ಯದಿ ಸಂಪೂಜಿತ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದೋ ಕಾ ಅರ್ಥ ಲಿಯಾ ಜಾಯ್ ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಕರ್ಮ ಕೋ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಕರ್ಮ ಕೋ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕರ್ಮ ಕೆ ನಿಯಮೋ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ತೋ ಯಹ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ನಿಯಮೋ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ. ಐಸೆ ನಿಯಮೋ ಕಾ ಉತ್ಸ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ಕೌನ್ ಬನಾಯೆ ಹುಯೆ ಹೈ. ಯೇ ಕಹನಾ ಕಿ ನಿಯಮೋ ಸೆ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಯಾ ಇಸ್ಕಾ ಪಾಲನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ನಿರರ್ಥಕ ಹೈ ಕ್ಯೋಕಿ ನಿಯಮ ಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೆ ಯಹ ನಹೀ ಇಂಗಿತ ಹೋತಾ ಕಿ ಉಸ್ಸೆ ಕೋಯಿ ಜಗಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಜಿಸ್ ಪರ್ ಯಹ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಜಮಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ವಸ್ತುತಃ ಪೂಜಾ ತೋ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈ. ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಇಸಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಕೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ತೋ ಕರ್ಮ ಕಿ ಗತಿ ಹೈ ತೋ ಸುನ್ನೆ ಮೇ ಐಸಾ ಕೈ ಬಾರ ಲಗ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಠೀಕ್ ಹೈ ಬಡಾ ಅಚ್ಚಾ ಸಾ ಥಾ ಅಬ್ ಖತಮ್ ಕಬ್ ಹೋಗಾ. ತೋ ಕರ್ಮ ಜೊ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಗತಿ ಯಹಾಂ ಪೇ ಔರ್ ಕರ್ಮ ಮಾನಸಾ ಯೇ ಅಭಿ ವಿಗತ ಏಕ್ ದೋ ದಿನೋ ಸೇ ಜೊ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ಶೃಂಖಲಾ ಯಹಿ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ ಕಿ ಅಭಿ ಜೊ ಹೈ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ವಾದ ವಿವಾದ ತೋ ನಹೀ ಕಹೂಂಗಾ ಮೈ वार्तालाप जो है हो रहा है भगवान श्री कृष्ण और महाराज नंद के बीच में, है ना, उनके पिताजी के बीच में। और जो है यहाँ पर अभी भगवान जो है इस वक्त जो है कर्म मीमांसा नाम की एक थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, थ्योरी भी नहीं कहेंगे, एक तरीके का सिद्धांत है, दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफी है, फलसफा है, दर्शन है, ये अभी चर्चा कर रहे हैं भगवान। और जैसे हम आगे आगे देखेंगे ये बदलेगा और भी आएंगे। तो ये कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये टेक्निकली जब जैसे कोई संस्कृत में जब हम सुनते हैं कर्म मीमांसा कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। आज जैसे हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने जो है ये फिलॉसफी जो है ये बड़े स्पष्ट रूप से जो है हमें देखे गए थे, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। तो प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद ने उसको उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा कि वर्क इज नॉट वर्शिप, वर्शिप इज वर्क। तो यानी कि कर्म पूजा नहीं है, पूजा करना ही हमारा कर्म है। तो ये सही दर्शन। तो ये इस वक्त जो है फिलहाल भगवान जो है ये दर्शन बोल रहे हैं, तो यानी कि जो कि आप लोगों ने पुराने लोगों ने कभी गाने सुनने का शौक होगा आपको, तो मुकेश का गाना था मुझे भी याद है, उसमें कुछ इस तरीके से था, देख तेरे किस्मत के कारण वन में गए रघुराई, किस्मत का लेख बिठे ना भाई, ठीक है ना। तो ये यही है, आज क्या रहे हैं, यही है ना, ये कर्म जो है ये इतना शक्तिशाली होता है कि रघुराय यानी कि भाई रघुपति रामचंद्र भी जो है उसके लपेटे पे आ गए, है ना, उनका भी जो है लेख नहीं मिटा, बेचारों को वन में जाना पड़ा, उनको उधर उधर की टुकड़े कर। तो ये जो है सिस्टम ये इस तरीके से भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, क्योंकि ये फलसफा, ये दर्शन जो है यही है, ये मुख्य। देखिए दुनिया में जितने तरीके की फिलासफियाँ बन सकती हैं आगे, वो पहले बनाई जा चुकी हैं, ठीक है ना। कलयुग के लिए जो है, कलयुग का जो है हमें तमगा मिला है, हमें मेडल मिला है, वो ये है, मंद सुमंद मतलब मंद भाग्य उपारे थे, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारी किस्मत, ठीक है ना, और तुम्हारी सारी बात मिला के तुम्हारी हैसियत जो है वो बड़ी गिरी हुई घटिया है, तो तुम्हारी सोच भी घटिया होगी, ठीक। तो वो जो घटिया सोच है वो उससे आगे जा ही नहीं सकती, कि किस्मत का लेख बिठे ना भाई, है ना, रघुबंधन में गए रघुराई, और इस तरीके की ये जैसे यहाँ पर कि भगवान जो है ये कर्म जो है ये इतना बलवान होता है, कर्म बलवान है, पता नहीं वो बड़े बड़े गाने सुने हुए हैं। तो ये इस तरीके के जो सोच है ये, और क्योंकि कलयुग भाई छोटा सा दिमाग कलयुग के आदमी का ना, बड़ा सोच ही नहीं सकता, जो बड़े सोचने वाले हैं वो सब सोच के जा चुके हैं पहले, ये दे चुके हैं कि तुम बहुत ज़्यादा भी सोच लोगे ना तो यहीं तक पहुँचोगे। तो इसीलिए तो ये सारा जो फिलॉसफी, ये जो फलसफा है, दर्शन, इसको वैदिक साहित्य के अंदर जो है इसका स्थान जो इसको बोला गया है षट दर्शन, षट मतलब छह प्रकार की फिलॉसफी, उसमें से पांच ये, और ये सब कमाल की बात है, सारा आस्तिक दर्शन है। आस्तिक का मतलब जो कि किसको मानते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक किसे कहते हैं, जी गलत जवाब जो वेदों को मानता है इसे आस्तिक कहते हैं, भगवान को मानने वाले को आस्तिक नहीं कहते, आस्तिक अस्ति, नास्तिक ना अस्ति नहीं है, वेद हैं सत्य हैं, वेद नहीं है सत्य नहीं है, ये आस्तिक दर्शन, ये वेद को मानने वाले आस्तिक, भगवान को मानने वाले नहीं, भगवान को मानने वाले तो साकार निराकार उस तरीके से आ जाएगी उसकी परिभाषा, आस्तिक होते ये आस्तिक दर्शन, ये जो वेदों को मानते हैं। तो ये वेदों से ही किस तरीके से जोड़ के, तो ये ऐसे करके, तो ऐसे बड़ी कमाल की चीज़ है वेद, है ना, कल्प वृक्ष है, हर तरीके का फल निकल आता है उसके अंदर, तो ये इस तरीके से, तो पांच प्रकार, पांच ऐसे दर्शन है जो ये कहते हैं कि वेद हैं, वेद सत्य हैं, पर हो सकता है भगवान ना हो, ये उसमें से एक है कि कर्म जो है वो इतना बलवान है कि उसके सामने भगवान भी बेचारे लाचार हो जाते हैं, भाई कराए तो देना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से, तो ये फिलॉसफी भी चल रही है यहाँ पर। तो ये अभी आगे हम देखेंगे, अभी आप सोचते कि भाई ये गोवर्धन पूजा के अंदर जो है ये कहाँ से आ गया, घुस गया है। तो ये भगवान अभी ये वार्तालाप कर, बड़ा जरूरी है इस जगह पर ये चीजें, है ना, कर्म का लेकर, तभी तो लोग कर्म काटने भागते हैं, कर्म काटने क्यों भागते हैं, और आदमी की सोच जो है वो इतना, आदमी इतना जो है क्या बेवकूफ़ी है, कैसे कैसी हरकतें वो उस वक्त करते हैं। एक आदमी है, एक जिंदा आदमी, मेरे को बात बताएं, एक जिंदा आदमी की वैल्यू ज़्यादा है कि मान लीजिए इसको एक कुछ भी पत्थर मान लो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, हैं? जिंदा आदमी की वैल्यू ज़्यादा है, पत्थर की वैल्यू ज़्यादा है? घबरा क्यों रहे, घबरा के बोल रहे हैं भैया घर में पत्थर रख लें पत्थर की वैल्यू ज़्यादा है या जिंदा आदमी की वैल्यू ज़्यादा है? जिंदा आदमी की वैल्यू ज़्यादा है ना, ठीक है। अब सोचो उस आदमी की सोच, बच्चे का दिमाग कितना खराब हो जाता होगा या कितना दिमाग खराब कर दिया जाता होगा जिसको बोला जाता होगा तुम्हारे कर्म काटने के लिए ना आदमी नहीं दे, ना खुद ना दूसरे, तुम बच्ची पत्थर की उंगलियों में पहन लो, सिर पे मार लो उसे, इच्छू जाती सारी दुनिया भागती है ना। ये कल बाजार से हमारे यहाँ पर ये हम उंगलियां दो ना, दस उंगलियों में दस उंगलियां सीधी होती नहीं, टेढ़ी होती है, इतना भार हो गया, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये उंगलियों में पत्थर नहीं, अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं इसलिए, है ना। ये जो बेजान पत्थर जो है ये हमारा हमारी नहीं आ पार लगा रही, ये इनको बोलो भगवान ही भक्ति करो और टाइम नहीं है, कर्म मान सके क्योंकि इतना उसको विश्वास होता है कर्म पे, कर्म ही पूजा, फिर कर्म की पूजा कर, ये सोच इस तरीके की का है। तो यहाँ पर अभी हम चलिए हम आगे चलते हैं, ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे अगले श्लोकों का। जो वस्तु भगवान में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। हम यह उस कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा पाते। शेमत शब्द का अर्थ है कि वास्तविक संपन्नता मात्र धन का संचय नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण खुलकर तर्क करते हैं कि जिस तरह कोई स्त्री अवैध पति के वास्तविक प्रतिष्ठा या आलोक प्राप्ति नहीं कर सकती, उसी तरह वृंदावन के निवासी अपनी संपन्नता के असली स्रोत की उपेक्षा करके उसके बदले इंद्र की पूजा करके कभी भी सुखी नहीं हो सकते। श्री जी गोस्वामी के अनुसार बालक कृष्ण ने अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों के समक्ष जो ढिठाई दिखलाई उसे उस दिव्य स्रोत का प्रदर्शन मानना चाहिए जो अपने नित्य भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन करते देख उनमें प्रकट हुआ था। जय श्री सिद्धार्थ भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो देखिए तो इस तरीके से तो ये अभी भगवान जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत करे, दरअसल गुस्सा निकाल रहे पर तरीके से, तो ये किस तरीके से, यानी कि हम जब ये गोवर्धन पूजा ये जो इस जो है ये पूरा का पूरा ये जो लीला है, इसका एक अभिप्राय ये भी है कि इंसान के अंदर कम से कम ये चीज़ डालना कि तुम कुछ ना सही तो कम से कम जो एहसान मन तो हो कम से कम तुम एहसान फरामोश तो नहीं बनो जिससे तुम लेते हो। तो ये आर्गुमेंट यहाँ पर दे रहे भगवान कि भाई तुम्हें तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है ये गोवर्धन की गिर चलती है, तुम्हारी गायें, तुम खुद, तुम सारी चीजें तुम इससे लेते हो और तुम फिर पूजा किसी और की करते हो, तो वो सेम चीज। तो हम हमारी पूरी जिंदगी हमारा सब कुछ एक एक सांस ये भगवान के सामने गिर भी है और हाथ जोड़ते हैं, है ना, पैर पकड़ते हैं, सिर झुकाते हैं औरों के सामने, तो ये बेसिक, तो यानी कि फिर बेसिक ग्रैटिट्यूड, बेसिक एहसानमंदी, कृतज्ञता ये भी फिर नहीं है। तो हम आगे फिर कहते हैं ये बेसिक चीज़ें जो गुण है ये इनके प्रति ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ये ज़रूरी है। तो ठीक है, ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये स्वयं भगवान जो है गोवर्धन, गोवर्धन बड़ी विचित्र गोवर्धन का जो है तत्व आता है कि गोवर्धन भगवान भी है और गोवर्धन भगवान से भक्त भी है इकट्ठे। तो कैसे ये कैसे, भाई सिंपल है, जैसे बलराम जी हैं ये भी भगवत तत्व है, भगवान है और भगवान के भक्त भी माने जाते हैं। तो अलग अलग जैसे रूप गोस्वामी अगर भक्ति रसामृत सिंधु में तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान शांतरस का आस्वादन कर रहे थे, जबकि गोवर्धन को खुद आज भगवान का सबसे बड़ा दास हरिदास वर्य है। तो वो टाइटल भी जो है और वो किताब भी जो है वो राधा रानी ने स्वयं दिया, उन्होंने बोला ये श्लोक। तो ये और गोवर्धन का खुद का रस जो भगवान के साथ वो साक्षर रस भी है। ये पार्वती आचार्य भी जो है वो पूर्ववर्ती आचार्य जो वो ये भी बताते हैं। तो मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स एक के साथ, तो इससे क्या पता चलता है कि ये लिमिटेड नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। कई बार लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि गुरु जी वहां पर क्या होता होगा, तो अनलिमिटेड चीजों के बारे में लिमिटेड कंसेप्ट होने से जो है इस तरीके की कई बार धारणाएं उत्पत्ति होती हैं कि जो ये हो सकता है वो ये नहीं हो सकता, जो ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। बहुत बड़ा जो है कंसेप्ट स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो रसों का जो है वो होता है। तो यहाँ जैसे पूरा ये वाक्य है जैसे हमने बताया कर्म मीमांसा और गोवर्धन इन लार्जर कंटेक्स्ट में, तो अभी जैसे पूजा भी शुरू होगी तो भगवान जो है, तो ये गोवर्धन लीला उठाई भगवान ने गोवर्धन, तो सबसे आम जो इसके पीछे सिद्धांत जो निकल के आता है वो क्या है कि भगवान भक्तों के क्या है रक्षक। बिल्कुल ठीक है, घबरा नहीं बोल रहे, तभी तो उठाए ना। तो भगवान ने पहाड़ उठाए, कौन से जैसे हमारे है ना, हमारा होता सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, तो भगवान ने उठा लिया मुसीबतों का पहाड़ हमारे रक्षा के लिए। तो दिस इज लाइक कृष्णा है ना, सेव हिज डिवोटी, कृष्णा प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। तो उसी तरीके से भक्त भी जो है वो भी अपने तरीके से ये कोशिश करते हैं दैट वो भगवान की रक्षा करें। कई जगहों पर ऐसा इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ पर भगवान की रक्षा करने के लिए जो है भक्त जो है आगे निकल के आते हैं। तो उसी तरीके से कलयुग में एक विशेष दायित्व कई बार भक्तों के ऊपर आता है, कई भक्तों के सेविंग कृष्णा फ्रॉम डिवोटीज। एक होता है कृष्णा सेव डिवोटीज, देन डिवोटीज ऑल्सो ट्राई टू सेव कृष्णा, सेविंग कृष्णा फ्रॉम डिवोटीज। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि भक्तों से भगवान को बचाना, किस तरीके से भक्तों से बचाना, जहां पर भक्ति के सिद्धांत जो है वो कच्चे हो उस जगहों पर भगवान को भक्तों से बचाना, उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो इस्कॉन का खास तौर पर जो है ये दायित्व है कि जितने प्रकार के ऐसे छल धर्म छलिए भक्त, इससे जो है भगवान को बचाएं। ये इस्कॉन का एक वो है अंधविश्वास से बचाएं, सुपरस्टिशन से, भ्रांत धारणाओं से, अपर सिद्धांतों से। तो ये लेके चलने वाले लोग भी भक्त प्राय होते हैं, सर ये भगवान का कई बार बड़ा नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो ये इनको से बचाना भी बहुत जरूरी है भगवान के साथ। तो आगे देखते हैं, जैसे ये जैसे ये पूरी लीला हुई, भगवान ने इंद्र से जो है रक्षा करी ब्रजवासियों की, तो पूछ सकता है कि भाई ये इतना परेशान कर रहा था ये, इसे मार देते इंद्र को जो है, जान से मार देते, खत्म कर देते उसको, कर सकते थे ना, शायद तो खत्म कर सकते थे, तो पर नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ एक बिल्कुल सही बात है, भगवान ने सेवा दी हुई है, क्या वृंदावन में बरसात वो करने की, वृंदावन को बाढ़ लाने की नहीं उसे। हाँ एक मैनेजमेंट पोजीशन दे रही है, किसको देते हैं भगवान सेवा ऐसे? यस जी लक्ष्मण जी, भगवान भक्त का गर्व, यानी कि इंद्र भगवान का भक्त है, देखिए किस तरीके का भक्त है, देख सकते हैं ना। हाँ वो तो चलो बात की बात है, गर्व तो बात की बात है, ये तो भैया अगर भगवान भगवान नहीं होते तो ये तो उड़ा चुका था, साफ कर चुका था भगवान को। तो भगवान भक्त के हाथ जो है भगवान का मर्डर हो जाता ना, तो यही हम बता रहे, यही बता रहे लीला से ही देख सकते हैं कि जो भक्त जो है इस टाइप की जब भक्ति होती है, इस टाइप का भक्त होता है तो मानसिकता ऐसी होती है, तो उसका बस चला तो भगवान का ही फोन कर दे, तो कोई कोई अजीब बात नहीं है, कि भगवान भगवान का मतलब को ही मारने की कोशिश भक्तों के द्वारा नहीं होती, हमेशा होती है ये हमजा, तो इसको ठीक करना। तो यहाँ पर तो खैर भगवान ने खुद ही जो उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया, पर अन्यथा तो ये दूसरे भक्तों का कई बार ये अभिप्राय ये लक्ष्य ये कई बार ये करना पड़ता है। कैसे? उसके सिद्धांत को ठीक करके, उसे ठीक करके नहीं, उसके सिद्धांत को ठीक। तो यहाँ पर जैसे आता है तो भगवान मारते भी हैं जब, तो किन को मारते हैं? दो तरीके के लोग, ये भी कई बार एक धारणा है कि भगवान के हाथ जो भी मारा जाता है जो है सबको है ना गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसे लोग जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं और उसको भगवान की भगवत्ता के बारे में जानकारी नहीं होती, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, लिबरेशन मुक्ति सायुज्य। ये जिसको भगवान की भगवत्ता के बारे में जानकारी हो एटलीस्ट मरते मरते, वो जाते हैं वापस एटलीस्ट वैकुंठ लोक तक। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, ये प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय के 35वें श्लोक में बता रहे हैं जी तात्पर्य में कि ये इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर तो खैर नहीं जरूरत थी। तो जो लोग इस तरीके से और भी बेसिकली माया से प्रभावित होते हैं, तो फिर वो जो बिल्कुल नास्तिक है वो तो खैर यही कोशिश करते हैं, वो तो मारने की कोशिश करते ही हैं इस तरीके से, भाई जी देखो जी ये भी जो है साधारण मनुष्य थे भगवान श्री कृष्ण, देखो इन्होंने भी अपना कर्म का जोगा, वही सेम चीज घूम के आ गई, देखो इन्होंने भुगता ना कर्म का, भुगता कि नहीं भुगता, इतने पाप किए थे इन्होंने, साजिशें करी थी इन्होंने, ये दुर्योधन और ये कौरव के खिलाफ 100 के 100 बताओ बच्चे मरवा दिए, बदुआ लगी नहीं लगी माई माँ की बच्चे 100 बदुआ है ना, तो 100 के 100 बच्चे इनके मरवा दिए, इतने लोगों को मरवा दिया, जरासन को कैसे मरवाया, देखो इनकी तो, इनकी तो पूरी तारीख पूरी इनकी हिस्ट्री जो है ये इस तरीके से है ना। तो ये तो फिर होना ही था जिन्होंने ऐसे भाई ऐसे करके, जैसा कोई करेगा वैसे ही भरेगा ना, जो बोएगा वही काटेगा। इन्होंने क्या कहते हैं कौरव के परिवार को मरवाया, तो भाई ठीक है इनका खुद का परिवार का देख लो कैसा हाल हुआ इनका, यादवों का है ना, खुद मार मार काट के मर के कोई नहीं जिंदा बचा नहीं ऐसे, और खुद कैसे मरे देखो है ना, खुद भी ऐसे छुटके बाहर करवा के ये सब करके उल्टे सीधे तिकड़म भी ऐसे करवाए ना, तो ये देखो इनका भी ऐसे हुआ, किसी ने पैर पे तीर मारा खत्म। तो ये देखो कितना बढ़िया बिल्कुल सेट हो जाता है सिद्धांत। और भगवान ही जो है वो भी माँ मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मजेबाज है अरे ठीक है, मैं उन्होंने भी शरीर ऐसे छोड़ा, शरीर छोड़ा प्रॉपर, भागवतम बता रहे प्रॉपर शरीर छोड़ा, ऐसे शरीर जो एक आम आदमी शरीर छोड़ता है, जी को कभी बताते हैं कि हाँ भगवान ने शरीर छोड़ा, भगवान ने शरीर कैसे छोड़ते, भगवान भगवान का शरीर अलग है। हाँ बता रहे जी गोस्वामी तात्पर्य दे रहे तीसरे स्कंद में जो प्रभात थी, जो भगवान भगवान है भगवान श्री कृष्ण यानी कि सारे अवतारों का समूह है ना, सारे अवतार जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर, तो उसी तरीके से सारे रूप यानी कि ये आध्यात्मिक उस तरीके से भगवान का जो भौतिक रूप है भगवान का कौन सा भौतिक रूप है जिसे विराट रूप कहते हैं ठीक है। तो ये विराट रूप जो है भगवान छोड़ के गए वहां पर, विराट रूप जो आसुरिक प्रवृत्ति होती है जिनकी ठीक है, वो आसुरिक तो नहीं बोलेंगे भौतिक मतलब प्यूरिफिकेशन की तरफ जो जा रहा है, जो शुद्ध शुद्ध हो रहा है मतलब अभी धीरे धीरे भक्ति के उन्मुख धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो ये भगवान का विराट रूप देख सकते हैं। अब देखेंगे ज्यादातर जो देवी देवता है ये देखते हैं विराट रूप देखते हैं भगवान, इसलिए पापा भगवद गीता में क्या है अर्जुन को जब दिखाया तो भगवान क्या है कि जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं वो नहीं ज्यादा विराट रूप को देखने की उसमें रहते हैं ताक में रहते हैं। तो पर वो देखने तो ये तो इस तरीके के जो लोग हैं इनके लिए भगवान छोड़ के गए, उन्होंने सुना कि प्रॉपर क्रिया हुई भगवान की शरीर की लाया क्रिया हुई एकदम अल्टीमेट। और ये भगवान 11वें स्कंद में बता के भी जाते ममा मामायाम रचयताम ये तत् उद्धव को कि भाई मेरे माया से सब रचा जाएगा तुम मत भटक जाना। तो ये अभी मैं दिखाऊंगा इस वक्त मेरे इसके बाद। तो ये इस तरीके से कि शरीर भगवान का छोड़ना विराट रूप के मतलब भौतिक छोड़ के जाना, तो ये भगवान ये सब चीजें कर सकते आम लोगों को जो है शांत रखने के लिए, और जो जिस तरीके से किस गलत फहमी में खुश फहमी में रहना चाहते हैं तो उसमें रह सकते हो, इस तरीके से भगवान करते हैं। पर भक्तों के साथ, हाँ भक्तों के साथ अलग व्यवहार। यूजुअली भगवान की एक परिभाषा खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की इस तरीके से आती है कि वह ना सत्य कार्यम कारणम से विद्यते वाला, कि भगवान कुछ करते नहीं है। अक्सर यही बताया जाता है, देखो भगवान कैसे पहचानते हैं कि भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, बाकी सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे फिर जो है कई बार, क्योंकि इंसान का दिमाग है ना तो ऐसे उल्टा ही चलता है, तो फिर सोचता है इसका मतलब ये बड़े आलसी भगवान है, ठीक है ना। तो देखो ये इनको काम नहीं है ना, जब भी नहीं सुनते, जब भी नहीं सुनते। ये बाकी सबके जो देवी देवता है ये कर्मठ लोग हैं, हमेशा तैयार मुस्तैद रहते हैं, ये सुनते भी हैं। इनके जो भी उपासक होते हैं ये हमारी इनके भैया सिर मारते रहो, ये नहीं सुनते, ठीक है। ये बड़े बड़े ढीले व्यक्ति हैं, है ना। पर एक्चुअली भगवान जो है ये इस मामले में बहुत, इज अ वेरी बिजी गॉड, इज नॉट अ लेजी गॉड, बहुत तत्पर है जरूरत से, मतलब ज्यादा, इन द सेंस कि जैसे, हालांकि भगवान भगवदगीता में कहते हैं कि ये था माम प्रबद्धंति ताम सत्यम अवजानी, जो जिस प्रकार से, पर एक्चुअली भगवान एक ये है तो भगवान का एक और पहलू है कि भक्त कातर अनुग्रह, यानी कि भक्त जो कृपा करने के लिए, और सिर्फ भक्तों क्या किसी पे भी, ये प्रोएक्टिव भगवान है, ये ऐसे रिएक्टिव नहीं है कि इस तरीके से पहले आप भगवान को जाके बोलोगे तो तभी होंगे, ये कोशिश करते हैं पहले से। इंसान इतना ढीठ होता है ये सुनता ही नहीं। ये आठवें स्कंद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये हमेशा जीव को अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं मदद करने की, ये किस तरीके से जो है सुन ले, मेरी तरफ आ जाए, मेरी बात मान ले, किस तरीके से ऐसे सुन, ये हमने सुननी नहीं उनकी बात, तो फिर क्या करें। तो फिर तब फिर ये सेकंड स्टेज की बारी आती है, ठीक है फिर जब जिस तरीके से आएगा उस तरीके से करूंगा, फिर उसको सुनी नहीं तब क्या करूंगा, कोशिश तो। गुस्सा गुस्सा नहीं आता, ये भगवान का सब्र देखिए कि ये आप भाई आपको कह रहे कि भाई तुम जो है तुम ये गंदगी में पड़े हुए हो, लथड़ रहे हो उसके अंदर, तुम उठ जाओ यहां से, निकल लो तुम, है ना, ऐसे तुम्हारा भी हाल देखो क्या तुम्हारा हाल हो गया है। तो पर नहीं, गुस्सा नहीं होता। तो ये तो अनलिमिटेड मर्सी जिसकी हम बात करते हैं, तो सीमाहीन कृपा जो है, असीमित कृपा, तो ये इसका मतलब यही होता है कि सीमाहीन कृपा अगर है वो, तो वो किसी चीज का इंतजार नहीं करेगी कि पहले तुम ये करोगे फिर मैं ये करूंगा, ना प्रोएक्टिव हो। ये हम ढीठ होते, मानते नहीं है, लेते नहीं इस चीज, तो ये हमारे ऊपर है। हम तो उल्टा जैसे बता रहे हैं, हम तो भगवान का भी वो लगा लेते हैं, उनको भी कटघरे में खड़े खींच लेते हैं, देखो जी तुमने ऐसा किया ऐसा किया तुम्हारे साथ इसलिए ये हुआ, आगे तक पहुंच जाते हैं। तो उस दिन अब हम लोग सवाल भी पूछ रहे थे यहाँ पर कि भगवान की कृपा भगवान के चरण कमलों से कैसे आती है, क्या आती है? ये सवाल जो है एक्चुअली भगवान की कृपा जो है भगवान के चरण कमलों से कैसे आती है, भगवान के चरणों में क्या है स्थान, सब भक्त जो है भगवान के चरणों की तरफ क्यों भागते हैं, ये सवाल जो है कोई वाकई में, ये सवाल सिर्फ भक्तों का नहीं, तो भगवान भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जो ये लीला आती है फेमस, वो बटस्य पत्रस्य बालमुकुंदम, जिसमें ये भगवान जो है एक क्या कहते हैं उसका बरगद पेड़ के ऊपर लेटे हुए, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा सड़क पे जाते हो, कई बार उस बड़ी फेमस फोटोग्राफ है कि भगवान जो है ऐसे लेटे हुए हैं, है ना, लड्डू गोपाल जी हमारे ऐसे तो लेटे हुए और पैर जो है अपने मुंह में दिया हुआ है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही सवाल, भगवान का भी यही सवाल है कि भाई मैं देखूं जरा ये सारी दुनिया सारे भक्त जो मेरे पैरों में क्या रखा है भाई, तो ये इधर क्यों आते हैं? तो भगवान खुद ही उससे देख रहे हैं, देखो जरा क्या इसमें से क्या रस निकल रहा है, क्या नेक्टर निकल रहा है। बारहवें स्कंद में प्रभुपाद बताते हैं, विष्णु चक्रवर्ती पाद जो ये बता रहे हैं, तो भगवान खुद करके देखते हैं चीज, खुद करके देखते हैं चीज कि ये मेरे अंदर जो है ये क्या है, मेरे पैरों में ऐसा क्या है। नहीं तो ये क्योंकि भगवान की सारी क्रियाएं है ना वो अदरवाइज बिविल्डरिंग है, मतलब आदमी जो है वो भौचक्का रह जाता है। कोई एक क्रिया आप मुझे बताएं बचपन से पैदाइश से लेकर, ठीक है, वहां पर अगर भगवान का जैसे होता है ना कि प्रोफाइल बन गया भगवान का, तो किस तरीके का प्रोफाइल निकलेगा, है ना। एक तो आदमी जेल पहुंचता है जो मुजरिम सजाया होता है, कोई उसने जुर्म किया हो, कत्ल किया हो किसी का, जेबें काटी हो किसी की, ये तो पैदाइशी कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है भैया ये देखो किस तरीके कर पैदाइशी जेल में जिसकी पैदाइश हुई हो, तो ये तो सारी चीजें ऐसी पैदाइश जेल में है ना, कॉन्ट्रोवर्शियल, उसके बाद भाई अच्छा उसके बाद रहे कैसे। ये जो वृंदावन लीला आप कहते हैं, ये वृंदावन लीला तो एक्चुअली अगर आप इसको देखो क्या है, भगोड़े की लीला है, भागते छुपते फिर रहे थे ना कंस से, ये कहन का पूरा खानदान छुपता फिर रहा था, इनकी तो औकात ही कोई नहीं, आप तो कोई बोल सकते हैं इनका तो पूरा खानदान छुपता फिर रहा था, ठीक, ये काय के भगवान है, ये भगवान तो पूरा खानदान जो है ये लिविंग इनकॉग्निटो बिल्कुल भी, ये तो छुपे छुपाए इनका सारा काम, ठीक। अच्छा उसके बाद ये आए जैसे भी मथुरा में आए, जैसे तैसे चलो जी मारा कंस को, और फिर जैसे ही दरासन चढ़ाई की यहां से भागे भगोड़े गए थे, ठीक है ना। तो सारी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है इनकी, अगर आप लीला देखो जहां से भाग गए तो वही फिर आगे भी ऐसे, फिर द्वारका में भी ऐसी लीलाएं हुई हुई हैं, फिर आप लास्ट तक जब जैसे हमने बताया कि भाई पैर में किसने तीर मार दिया, ये कहीं से भगवान लग रहा, ये तो मतलब इस तरीके का, तो ये है। और इस तरीके से अगर भगवान के कार्य कर्म, भगवान के कर्म के इस हिसाब से आप देखेंगे जो ये सिलसिला सभी भगवान बता रहे हैं इस वक्त, तो आप पागल हो जाओगे, ये तो कभी नहीं साबित कर सकते। कर्म मीमांसा ये किसी भी ऐसे सिद्धांत वेदांत सूत्र को के अलावा, भागवतम के अलावा अगर आप भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा धोखा खाएंगे हमेशा। और सारी भगवान की लीलाएं ये किसी न किसी फिलोसफी से जस्टिफाई हो जाएगी, ये भगवान नहीं है। तो इसीलिए ये भक्ति के अलावा भगवान को जानने का और कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, किसी ने नहीं आज तक, ये बड़ा जरूरी है, इसलिए इन चीजों को देखना ही है, इसलिए भगवान भी ये फिलोसफी पहले बोलेंगे फिर काटेंगे। ये रासलीला में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण जब ये करते हैं ना, यूजुअली हम ऐसे सुनते हैं तो हम तो ऐसे सोचते हैं जैसे हम जज्बाती होते हैं, ऐसे भगवान भी ऐसे जज्बाती होते होंगे, जज्बात होते हैं जज्बाती नहीं होते, भाव होते हैं भावुक नहीं होते। तो ये है ना, जैसे हम खासतौर पर रासलीला में पढ़ते हैं, जैसे आते हैं तो भगवान है, भगवान की सारी गोपियां हैं, सारी गोपियों को भगवान पकड़ पकड़ के एक करके सबको चूमते हैं, है ना। तो हमें लगता है जी देखो जी क्या हो रहा है, ओ भाई ये जो भगवान ये बता रहे हैं आचार्यगण, ये प्रॉपर इंसान दूसरे जन्म में प्रॉपर बता रहे हैं कि ये जब भगवान चूमते हैं, जिस गोपी को चूमते हैं, ये चूमने के साथ साथ ये ट्रांसफर करते हैं, ये चूमा एक और चूमा तो किसी के अंदर जो है संगीत की कला ट्रांसफर करी, किसी को चूमा नृत्य की कला ट्रांसफर करी, किसी को चूमा कपड़े पहनने का सलीका, ये श्रृंगार का सलीका ये ट्रांसफर करा, इस तरीके से एक एक चूमते हैं ऐसे करके ये ट्रांसफर कर। तो उसी तरीके से भगवान बता रहे हैं, उसी के अगले पैराग्राफ उसी लाइन में जो है प्रॉपर बता रहे हैं, उसी तरीके से ये जो भगवान का जी ये जो चूमना है, ये जो भगवान का जो चुम्बन है, ये कंटिन्यू होता है भागवतम के तरीके से, इससे माध्यम से। यानी कि वो व्यक्ति जो भगवान की लीला भागवतम सुनता है, वो उसी तरीके से वो जो भगवान का चुंबन है उस तक भी पहुंचता है। हियरिंग रीडिंग भागवतम इज बीइंग किस्ड बाय कृष्ण। मैं नहीं बता रहा, भागवतम बताता है, दूसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 24, तात्पर्य पढ़ लेना घर पे जाकर। ये कोई सती चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है। तो ये जैसे हम बता रहे थे कि भगवान को नहीं तो अलग अलग तरीके से लोग, पर फिर भी भगवान से कृपालु है कि करते हैं कैसे भी कृपा। एक कथा आती है ऐसे स्कंद पुराण में महाभारत में एक असुर था, शायद ना सुनी हो आप लोगों ने, बड़ी मजेदार है, इसमें समझ आएगी कैसे भगवान घंट कर रहा था, घंट करना। तो ये कैसा असुर था, ये जैसे असुर सारे होते हैं शिव जी के उपासक होते हैं, तो ये असुर का मतलब क्या था, भगवान विष्णु का दुश्मन, ठीक है। तो ये इतना ऐसा था, इसको इतनी चिढ़ थी भगवान के नाम से, सुन भी नहीं सकता था भगवान का नाम, इससे घंट करना नाम इसलिए पड़ा था। कान का मतलब क्या होता है, कान, और घंट का मतलब क्या होता है मालूम है, घंटा, घंटी, घंट कर्ण, ये कान में घंटी बांध के घूमता था ताकि भगवान का नाम न सुनना पड़े, टिंग 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 चलता था, कहीं भी चलता था भगवान का नाम न सुनना पड़े, ये घंटा बांध के कान में घूमता था, घंट कर्ण ये नाम था उसको। मैं सभी पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था तो बाकी लोगों की बातें कैसे सुनता होगा, सुनता होगा जैसे भी असुर है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो सुननी होते सुन लेते, तो नहीं सुननी होती नहीं सुनते, असुर तो वैसे ऐसे ही होते। तो कान में घंटा बांध के घूमता था ये बंदा, ये भगवान विष्णु का नाम, ये फिर ये शिव जी की तपस्या करी, तो शिव जी आए और तपस्या करी कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैं भी चलो जी असुर मुक्ति की बात कर रहे, तो चली होगी उसके दिमाग में कुछ कि चलो जी मुक्ति मांग के देखते हैं, तो मुक्ति चाहिए। तो शिव जी आए तो उन्होंने बोला कि देखो जी मुक्ति का डिपार्टमेंट तो मेरा है नहीं, ये तो अल्टीमेट मुक्ति अगर तुमको चाहिए, कैसी वाली मुक्ति चाहिए भाई अल्टीमेट, तो ये तो फिर आपको भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा, जाओ उनके पास जाओ। तो इस चक्कर में उसने जो है फिर अपने कान के घंटे उतारे इसने, ठीक है सब, तो भगवान विष्णु का नाम तो सुनना पड़ेगा हम ऐसे करके। तो ये ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण जब बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम गए, तो वहां पर जब गए तो उन्होंने भगवान एक जगह बैठे थे, तो उस वक्त विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने भगवान ने सुना कई तरीके की आवाजें आ रही है, किस तरीके की आवाजें आती हैं, ऐसे जब होते हैं इनकी आवाज कैसे आती है, ये तो पिक्चर में देखे ना, ऐसी आवाजें भगवान ने भी सुनी, ठीक है ना। तो भगवान को समझ आ गई भैया किसकी आवाजें हैं, है ना, भूत भेद पिशाच होंगे यहाँ पर, कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना, बिल्कुल डरावना था, समझ लीजिए आपको मंजर, आप अपने आप सोच लीजिएगा, अभी दिन में बता रहे रात को बताएं डर जाएंगे सर। तो खैर, तो वो जब ऐसे सुना भगवान ने, तो कुछ देर बाद जो देखा वो आ गए, घंट करना आ गया, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते बुत्ते पिशाच विशाच ऐसे के साथ घूम रहा था। तो भगवान ने देखा, अब भगवान बड़े हैरान थे, ये घूम रहे हैं लोगों के साथ, ये नाम ले रहे हैं भगवान विष्णु का, ये चक्कर क्या है इसका, उसको बुलाया तो बड़ी विचित्र आदमी है तू, तो उसको बुलाया भाई क्या क्या भाई क्या बात है क्या माजरा क्या। तो उन्होंने बताया शिव जी का भक्त था और उन्होंने मुझे कहा कि भगवान श्री विष्णु की पूजा करो, मैं भगवान का नाम ऐसे मैं लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया कि एक दिन तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन जरूर होंगे। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। तो जब ये समझ आ गई तो जो भगवान को लगा यार तो ठीक है बेचारा बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भगवान ने फिर अपना विराट रूप दिखाया, इसलिए ये घटना बता रहा हूं। ऐसे लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे हैं, आसुरी प्रवृत्ति रही है पर तमाम, ये तो ये लोग देखना चाहते, इनको अच्छा लगता है, इनको दिखाया तो बड़ा खुश हो गया वो, तो अब वो खुश हो गया, अब उसकी बारी थी, भगवान ने उसको पहले खुश कर दिया, अब उसको भगवान को खुश करना था। तो क्या गया, गया उन्होंने कहा भगवान को एक मिनट इंतजार करना, अभी आया अपने आया, एक आधा खाया हुआ जो है एक ब्राह्मण का जो है वो नाग की लाश वो ले आया रगड़ी ला के। तुम्हें क्या ले भैया तू, कहते भाई हमारे राक्षसों में भैया जो सबसे बढ़िया जो तोहफा होता है वही होता है, हमारे तो ट्रेडिशन में ही चलता है। तो समझ आ गए थे ठीक है, कुछ देना चाहता है बेचारा, क्या करे भैया प्रवृत्ति उसकी, तो वो तो नहीं ग्रहण किया, तो भगवान ने जो उसको एक बार पीठ थपथपा दी, तो थपथपा दी तो शरीर छोड़ दिया उसने, नहीं भाई वो बैकुल चला गया सीधा, हो गया काम उसका। तो ये तो इस तरीके की भी मानसिकता होती है लोगों की, तो भगवान उसको भी समझते हैं अकॉर्डिंगली, रेसिप्रोकेट करते। तो ये मानी तो कई सारी चीजें ऐसे हम देख सकते हैं इसके अंदर, भगवान की कृपा किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन उठाया अपने सारे, अगर देखें अगर सिर्फ वृंदावन के अगर निवासी देखें तो वो इतने नहीं थे कि उसके लिए गोवर्धन की जरूरत थी, मतलब इंसान तो जानवर थे इतने सारे, तो उसलिए उठाना जरूरी था, तो उठाया उन्होंने। तो देख सकते हैं, तो ये इसलिए कृष्णा भावनामृत में हमें प्रावत बताते हैं भक्तों को ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, जो हमें आपने जो दिया उससे भी हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं, हम उससे पूर्ण रूप से जो है हम संतुष्ट हैं, और जो आपने हमें नहीं दिया उससे भी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जो दिया तो दिया, जो नहीं दिया वो हमारे लिए नहीं था। दिस इज हाउ डिवोटी इज भगवान वो। और ये एक और बात, कई बार यूजुअली ये समझा, जैसे ये गोवर्धन लीला है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग की भगवान को जो भगवान को जो अप्रोच करते हैं, वो भगवान की तरफ जो बढ़ते हैं, वो जो है वो अलग अलग होता है। एक अक्सर जो भक्तों के बारे एक धारणा बन जाती है, ये जैसे ही बताया हुआ ना कि ब्रह्म परमात्मा भगवान है ना, या ये तो ये ऐसे नहीं है कि हर भक्त पहले ब्रह्म समझता है फिर तो ब्रह्मवादी बन जाता है, जब एक स्टेज क्लियर होगी फिर वो परमात्मावादी बनता है, तो वो स्टेज भी क्लियर हो गई वो भगवान फिर भगवत भक्ति क्या आता है। ऐसा नहीं है। ये स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आप खुद ही देखें ना, सब लोग यहां पर ज्यादातर तो माला करने वाले हैं ना, कितनों को माला करते हुए जो ब्रह्मानुभूति होती है बताना मुझे, एक नींद नहीं आती और बात है। वैसे कितनों को ब्रह्मानुभूति होती है माला करते हुए? नहीं होती। आपका जो टारगेट है आप उसी हिसाब से आपका रियलाइजेशन होगा। ये स्टेज वाइज रियलाइजेशन जो है इसका मतलब अलग अलग स्टेज का मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं कि यही रास्ता है सबको पहले यही रियलाइजेशन लेनी पड़ेगी रियलाइजेशन, ऐसा नहीं है। ये आठवें नवे स्तंभ में, हाँ छठे स्तंभ में इनफैक्ट प्रॉपर नवे अध्याय में प्रॉपर बता रहे हैं। ये ब्रह्म की अनुभूति हो गई, परमात्मा अंतर्यामी के रूप में जब देखते हैं, या तीन विष्णु जो सृष्टि करने वाले, फिर या चतुर्व्यूह भगवान का, या फिर आगे जाके संकर्षण बलराम जी इधर, फिर और फिर आगे फिर भगवान श्री कृष्ण। ये ऐसा नहीं है कि जिसने जो भगवान कृष्ण तक पहुंचेगा वो तो सारे करते हुए पहुंचेगा, बोलो यार ये क्या छोड़ना है यार नीचे यही हो जाएगा काम, तो क्या करना है, वापस जाना है ना भगवत धाम, बैक टू गॉडहेड जाना है ना। कि पहले भी विष्णु वगैरह से काम चला लेंगे, ये फिर विष्णु के बाद इधर जाओ फिर इधर जाओ, ऐसा है नहीं। भ्रांत धारणा है, कई बार भक्त इसको लेकर चलते हैं कि इस तरीके से नहीं है, क्योंकि तो भगवान की तरफ से अगर हम देखें तो भगवान जब ये देखिए गोवर्धन उठाया, भगवान की लीलाएं जो इस तरीके की होती हैं ये दोनों तरफ से, अगर हम आम जबान में बोले ना, दोनों तरफ से मजे ले जाते हैं। जैसे एक हम स्टेटमेंट है भागवतम की, मैं पढ़ता हूं आप सुनिएगा। ही इज प्लीज टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज बाई किलिंग हिज एनिमीज, ही एंजॉयज बोथ द किलिंग एंड द प्रोटेक्शन। समझे? भगवान भक्त को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं किसी असुर का संहार करके, मान लीजिए तो भगवान ने संहार का भी मजा ले लिया और सुरक्षा देने का भी मजा ले लिया। तो ये दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कोई कि ये भगवान को भक्तों को सुरक्षा देने के लिए किसको मारना पड़ा और सुरक्षा का आनंद मिला, नहीं। भगवान ने कहा आम के आम गुठलियों के दाम, ये मजे मिल रहे ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही इज प्रोटेक्टिंग एंड किलिंग एब्सोल्यूट, इसीलिए कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है, पर एक्चुअली एब्सोल्यूट के डिफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब ही ये है अधिकार, एब्सोल्यूट का मतलब ये है जो कि जिनकी स्टेट हमेशा एक जैसी रहती है। अगर भगवान आनंद में रहते तो हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं होती है जिससे भगवान का आनंद चेंज जाए। हरकतें अनंत होती हैं, ठीक है ना, और अंजाम एक होता है आनंद, ठीक है ना। हम जब कोई ऐसी चीज जो हमारे पसंद के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ होती है तो हम दुखी होते हैं, और जब हम कोई चीज हमारे पसंद के मुताबिक होती है तो हम सुखी होते हैं। ये जो सुखी और दुखी जो चीज है, ये भगवान के लिए महज टूल्स है, औजार है, जिससे भगवान आनंद लेते हैं। व्हेन कृष्णा एंजॉयज ब्लिस, ऐसा समझ लीजिए कि भगवत की कृष्णा एंजॉयज ब्लिस इन टू वेज, ऐसा समझ लीजिए भगवान के आनंद को उपभोग करने की दो के दो तरीके हैं, एक सुख से और दूसरा दुख से। हम सुखी या दुखी होते हैं, भगवान इससे भी निकाल लेते हैं अपना, ठीक है ना, सुख से भी आनंद निकाल लेते हैं, दुख से भी आनंद निकाल लेते हैं। दुखी दिखना आनंद की एक स्टेज है और सुखी दिखना आनंद की दूसरी स्टेज है। दिस इज गॉड एब्सोल्यूट, ये नहीं किसी के करों में आते। सो आई मीन जो ये जब हम ये भगवान की ये लीलाएं देखते हैं, टू बी वेरी क्लियर, गोवर्धन उठाया, भगवान ने भक्तों की रक्षा करी, जैसे हम दोबारा हम पहले बता रहे थे कि भक्तों का ये कर्तव्य है कि एक्चुअली कि भगवान की सुरक्षा करें, और कई बार जो है ऐसे भक्तों से सुरक्षा करें, ठीक है। हम यहीं पे विराम देंगे, किसी पर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, विराम देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, प्रसिद्ध भक्तवृंद की, गाय गोष्ठनाथ प्रेमानंदे हरि।